हरिओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य श्री चरणों में वंदन। हर समय देखो तो प्रेमपुरी आश्रम में कहीं न कहीं संत का आगमन होता रहता है और सभी की इतनी कृपा है प्रेमपुरी आश्रम पर कि हमेशा लगता है कि यह जो संतों का आवरण है हमेशा हमारे बीच में जो पधारे हैं, हमारे संस्था के ट्रस्टी भीगनों, कैलाश पीठाधीश्वर भीगनों और जिनके आशीर्वाद से यह संस्था पूरी चल रही है, ऐसा कैलाश पीठाधीश्वर के प्रेमपुरी जी महाराज भी वहां के ही थे और उन्हीं से पधारे हुए आनंद स्वरूप स्वरूपानंद जी स्वामी जो यहां पधारे हैं वह ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है और विशेष करके पूज्य बड़े महाराज जी का हम वंदन पूर्वक आभार मानते हैं कि ऐसे संत हमारे बीच में उन्होंने भेजे हैं। स्वाध्याय के रूप में वह हमारे बीच में पूरे महीने तक रहेंगे। ईश्वर की और भी एक अनुकंपा हुई है कि सोमवार को प्रातः भी पूज्य महाराज जी द्वारा प्रातः प्रवचन 7:30 से 8:30 एक दिवसीय प्रवचन में उनका हमें पुनित लाभ मिलेगा और 8:45 से 9:30 स्वाध्याय में भी पूज्य महाराज जी रहेंगे। आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए हरिओम।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वांतर्यामी परमेश्वर की महती अनुकंपा से महापुरुषों की सदिच्छा मंगलमय प्रेरणा सुभाषीर्वाद से स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा समायोजित दैनंदिन स्वाध्याय कार्यक्रम में आज यहां उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति तथा सज्जन बंध पंचदशी ऐसा एक अनूठा ग्रंथ है जिसका स्वाध्याय करने से, चिंतन मनन करने से व्यक्ति अपने आत्मस्थिति में प्रतिष्ठापित होता है और इसका अक्षुण्य रूप से स्वाध्याय जो है चल रहा है और आप सब उसका लाभ भी उठा रहे हैं। जितने भी बैठे हुए आप सब विद्वज्जन हैं यहां, क्योंकि रोज सुनते रहते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ संस्कार है। तो यहां प्रसंग चल रहा था महावाक्य श्रवण करने के उपरांत दृढ़ता क्यों नहीं होती है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो महावाक्य है सुनने के उपरांत दृढ़ता क्यों नहीं होती है। तो इसके ऊपर स्वामी विद्यारण्य जी महाराज, इसके पहले मैं थोड़ा लिंक बनाने के लिए अहम ब्रह्मास्मि वाक्यार्थो अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधो यावत् दृढ़ी भवेत् शमादि सहित स्तावत् अभ्यसित श्रवणादिकम। इसमें कहते हैं कि जो वाक्यार्थ है अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, जब तक दृढ़ न हो जाए, जैसे अभी आप लोगों के नाम है, किसी के नाम राम है, श्याम है, कोई व्यक्ति सोया हुआ भी होगा तभी भी राम कहने से वो जग जाता है, नाम के प्रति इतना दृढ़ता है। तो ठीक इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि ये जो वाक्य हैं उसका चिंतन करते करते अभेद अनुभव में प्रतिष्ठित हो जाए। मैं ही सबके अंदर बाहर परिपूर्ण एक आत्म तत्व हूं, ब्रह्म तत्व हूं, इस प्रकार। लेकिन जब तक ऐसा बोध नहीं हो पाता है तो यहां कहते हैं शमादि सहित स्तावत, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, इसके साथ अभ्यसित श्रवणादिकम, श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहना चाहिए। तो दृढ़ता कुछ कलमस होने के नाते, चाहे पूर्व जन्म का हो वर्तमान जन्म का हो, कुछ यदि मलिनता है, कलमस है, अशुद्धियां है, तो उस तत्व को हम सहजता से अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो यहां कहे कि भाई दृढ़ता क्यों नहीं होती है, ये प्रश्न है। तो उसके तीन हेतु दिए, एक तो श्रुति नानात्वात, दूसरा हेतु है असंभावितत्व, और तीसरा हेतु दिए विपरीत भावना, शरीर आदि में अहंता। ये तीन हेतु दिए जिसके कारण अहम ब्रह्मास्मि इसका बोध हमको नहीं हो पा रहा है। देखिए श्रुति नाना है, 1180 जो है उपनिषद है, और सारी उपनिषदों में जैसे सृष्टि क्रम है, सोच लीजिए छांदोग्य उपनिषद में तत्तेजो असृजत, तेज से संसार का सृजन हुआ। तैतरीय उपनिषद में तस्माद वायु तस्माद वा आत्मना आकाश संबुद आकाशाद वायु, इस प्रकार उसमें आकाश से सृष्टि की उत्पत्ति बतलाई गई। बृहदारण्यक उपनिषद में सर्वम असृजत, एक साथ सब कुछ उत्पन्न हो गया। तो जो साधक है पर्यालोचन जब करता है एक साथ कि भाई किसकी बात को माने स्वीकार करें, तेज से सृष्टि हुई अथवा आकाश से सृष्टि हुई, कि एक साथ संपूर्ण सृष्टि जो है हो गई। तो द्वंद्व में पड़ जाता है वो, श्रुति नानात्वात। तो अलग अलग शाखाओं में अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है, तो उसमें उसका तात्पर्य जो है निर्णय किया जाता है। तात्पर्य देखना पड़ेगा, क्योंकि श्रुति जो है उसमें कर्म कांड भी है, उपासना कांड भी है, ज्ञान कांड भी है। जो व्यक्ति कामना से ग्रसित है, कुछ चाहिए, कुछ आवश्यकता है, उसमें जो लगा हुआ है, तो ऐसे कर्म करना चाहता है, सहज प्रवृत्त हो जाएगा उसमें। जैसे कहते ना चमत्कार को नमस्कार है, आजकल के जमाने में कहीं यदि कुछ चमत्कार हो रहा है तो हर व्यक्ति उसकी तरफ जो है लपक पड़ते हैं, सहज अनुधावन करते हैं। लेकिन चमत्कार से आपको जो कुछ भी चीज मिलेगी सांसारिक चीज होगी, अनित्य है, असार है, दुख रूप है, इसका विवेचन नहीं कर पाने से व्यक्ति उसकी तरफ जो है अनुधावन करता है, दौड़ता रहता है। एक बार जब निर्णय कर लेता है कि संसार अनित्य है, शरीर भी अनित्य है, जो भी दिखाई पड़ रहा है दृष्टम नष्टम स्वभावम, शंकराचार्य भगवान कहते हैं जो भी दिखाई पड़ता है वो नष्ट होगा, ऐसा संसार के स्वभाव है। तो जब वो एक बार निश्चय कर लेता है संसार क्या है, तब वो अंतर्मुख हो सकता है। और संसार जब तक सत्य महसूस हो, शोभन अध्यास हो, उसके प्रति महत्व बुद्धि हो, तो व्यक्ति अंतर्मुख होने के लिए कोशिश करने पर भी नहीं हो पाता है। तो श्रुति नाना है और अनेक प्रकार उसमें वर्णन किया गया है, उसका तात्पर्य निर्णय करना पड़ेगा। दूसरी बात, असंभावी तत्वम, मैं तो ये सीमित जो शरीर है इसके अंदर हूं, वो सर्वव्यापक ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? मैं तो एक रोटी भी ठीक से नहीं बना सकती, तो सारे संसार के सृजन कैसे कर सकती हूं? जो एक छोटी सी संस्था को चलाने में अक्षम है, इतने बड़े विश्व को चलाएगा कैसे? तो जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है? असंभावना दोष उसमें दिखाई पड़ता है। कस्मिन काले, किसी भी समय भी ऐसा संभव नहीं है, ऐसा दोष उसमें है। जब भी वो विचार करता है तो लगता है कि यार मैं तो एक संकीर्ण सीमित 3.5 हाथ के जो शरीर है इसके अंदर हूं, इसी को मैं करता रहता हूं। और आप लोग कहते हैं कि आप ब्रह्म हैं, अरे व्यर्थ बात कर रहे हैं। असंभावना दोष। तीसरी बात है, अनादि काल से अनेकों शरीरों को हम लोग ग्रहण करते हैं, छोड़ते रहते हैं। जिस जिस शरीर को ग्रहण करेंगे उस शरीर के साथ इतने घना ठोस तादात्म्य हो जाता है कि वो सोचता है कि यही मैं हूं। शरीर के अंदर अहम भाव हो जाता है। तो इसलिए 3 प्रकार के दोष इसमें गिनाए, जिसके कारण हम लोग महावाक्य को ठीक ठीक अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसमें प्रतिष्ठित नहीं हो पाते हैं। और इन तीनों को दूर करने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन जो है बतलाया गया है। इत्थम वाक्यैः तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवेत्। उसमें प्रथम अध्याय में ही पंचदशी की उसमें कहते हैं जो महावाक्य है उसके अर्थ का अनुसंधान करना। अब जैसे आप थोड़ा सा विचार करेंगे, दशरथ महाराज शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, तो श्रवण कुमार जब पानी जो है भरने के लिए गए, जब मटकी को जल के अंदर प्रवेश कर रहे थे, उस समय बुड़बुड़ ऐसे आवाज आई। इस आवाज को दूर से दशरथ महाराज सुने कि लगे कि भाई उसमें कोई जीव जो है पानी पी रहा है, और वहां से वो सरसंधान की शब्द को सुन करके बाण को छोड़ दिए। तो जहां से आवाज आ रही थी वहां जाकर के बाण जो है लक्षित हो गया, बेधन कर गया। ठीक इसी प्रकार जो शब्द हम लोग सुनते हैं, यहां शास्त्र है तो कहता है कि भाई आप ब्रह्म है। अब ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है जो व्यापक है, जो व्यापक है, तो उस व्यापक का अनुसंधान करना है, व्यापक का अनुसंधान करना है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, कोई वार्ड मेंबर है सोच लीजिए। अब वार्ड मेंबर दूसरे साल में सरपंच बन गया, पहले तो गृहस्वामी था, केवल घर के बारे में सोचता था, वो जब वार्ड मेंबर बन गया तो एक वार्ड के बारे में सोचने लगा। सरपंच जब बन जाता है तो गांव के बारे में सोचता है, अब चेयरमैन बन जाएगा तो कई गांव के बारे में सोचेगा, उसके अंदर जितने भी वार्ड आएंगे सबके बारे में सोचता है। अब वो यदि एमएलए बन गया तो उसका जो एक क्षेत्र है उसके बारे में चिंतन करता है, और फिर किसी डिपार्टमेंट में मंत्री बन जाता है और थोड़ा व्यापक हो गया, फिर सांसद बन गया और थोड़ा व्यापक बन गया, मंत्री बन जाएगा और व्यापक हो जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, सारे देश उसकी दृष्टि में रहती है, केवल उसका घर नहीं, जितना बड़ा देश है, चाहे कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आतंकवादी प्रवेश कर रहे हैं, कहीं रेल एक्सीडेंट हो गई, कहीं कुछ हो गया, हर समय उनको जो है सारे देश के बारे में चिंतन करना पड़ता है, और उसकी उनके जो दृष्टिकोण व्यापक हो गया कि नहीं, पहले तो संकीर्ण था, केवल अपने घर के बारे में सोचता था व्यक्ति, तेल नमक हो गया तो बस घर का काम हो जाता था, और देश को चलाना है तो मस्तिष्क का विकास उसमें करना पड़ेगा। तो जब यहां आप सुनते हैं कि आप ब्रह्म है, तो ब्रह्म कहने से शरीर नहीं है, सबके शरीर के अंदर और बाहर जो रहता है, सब बाह्य अभ्यंतरो अजह, बाहर भी अजन्मा है अंदर भी अजन्मा है, ऐसा जो तत्व है वो आपके स्वयं के स्वरूप है। तो इसलिए शास्त्र सबसे पहले कहता है इत्थम वाक्यैः तदर्थानुसंधानम्, उस वाक्य के माध्यम से उसका जो अर्थ है। अब जैसे आप सोचिए ये घड़ी है, ये घड़ी है, घड़ी जो एक शब्द है श्रवणेन्द्रिय ग्राह्य है, शब्द कानों से हम लोग शब्द को सुनते हैं, उस शब्द से उसका जो अर्थ है ये घड़ी है, ये अलग चीज है, ये शब्द नहीं है, शब्द से भिन्न है, लेकिन उस शब्द के माध्यम से हम लोग घड़ी को जानेंगे। जैसे घर के अंदर घड़ी है, आप कहेंगे भाई घड़ी लेकर के आओ, तो घड़ी शब्द तो कान के माध्यम से ग्रहण किया, और उसके माध्यम से जाकर के अर्थ जो घड़ी है, वस्तु जो घड़ी है उसको लेकर के आता है, दोनों अलग हो गए नहीं। लेकिन यहां शास्त्र में उससे भी थोड़ा और अलग, लक्ष्यार्थ को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द जो है ब्रह्म को बोलने में असमर्थ है, वाणी बोलने में असमर्थ हो जाती है। जैसे आप सोचिए कि छोटा सा बच्चा है, उसको आप समुद्र किनारे लेकर के गए, उसके लहरें उमड़ रही है घूमड़ रही है, उसको देखता है बच्चा आनंदित हो जाता है। अब घर में जब आप आएंगे, वो तो देखा है समुद्र विराट है, जलराशि है, उसको देखा, संपूर्ण समुद्र को तो देख नहीं सकता, लेकिन जितने भी देखा वो विशाल है। अब घर में आने के बाद उनके दादा दादी पूछते हैं क्या देखा, समुद्र, अरे कितने बड़ा, इतने बड़ा, अब जितने बड़ा हाथ वो कर रहा है, क्या समुद्र इतने बड़ा है क्या, लेकिन उसके पास इतने ही प्रकट करने का माध्यम है, उसके आगे वो बोल नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार शास्त्र भी कह देगा कि आप ब्रह्म है, लेकिन जब आपको अनुभव होगा तो पता लगेगा कि सबके अंदर बाहर में परिपूर्ण तत्व हूं, सब जगह मैं ही मैं हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं। तर्कैः संभावितत्वानुसंधानम् मननम् तु तत्, तर्क के माध्यम से उसके लिए तर्क चाहिए, कैसे तर्क, शास्त्रीय तर्क, शास्त्र जिसको अनुमोदन करता है ऐसा तर्क आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के उसमें संभावना होती है कि आप जैसे ब्रह्म कैसा चेतन है, आप भी चेतन है, तो वो लगेगा कि भाई नहीं तो व्यक्ति क्या सोचता, मैं मर जाऊंगा, मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं बीमार हो गया हूं। शरीर के अंदर जो चीज है ना उसको हम लोग आरोपित करके दूसरों को प्रकाशित करते हैं, कहते हैं। लेकिन जब शरीर नहीं था तब भी आप थे, जब शरीर नहीं रहेगा तब भी आप रहेंगे। अच्छा थोड़ा विचार करके देखिए, आप बंबई में होंगे तभी जाकर के सत्संग में आएंगे कि नहीं होंगे तब आएंगे? जब होंगे तभी तो आएंगे ना। तो पहले आप होंगे तभी तो शरीर के माध्यम से संसार को आए। शरीर तो जड़ पदार्थ है, जब प्राण छूट जाता है तो शरीर तो दो कौड़ी का बन जाता है, ना वहां कोई क्रिया हो रही ना कोई प्रतिक्रिया हो रही है। हां चेतन का जब उसके साथ तादात्म्य हो जाता है तब शरीर में क्रियाएं होने लगती हैं। तो इसलिए तर्कों के द्वारा उसमें संभावना जो है शास्त्र में दिखाई जाती है, जिसके माध्यम से आप मनन करेंगे। एक तो जो संसार है ये सत्य लगता है, तो अनेक कोटि प्रमाणों के द्वारा उसका विचार किया जाता है, इसमें सब आता है। तो मनन के द्वारा जो असंभावना है वो दूर होगा। और शरीर के साथ जो तादात्म्य हो गया कि शरीर को ही हम लोग कहते हैं यही मैं हूं, शरीर से भिन्न और कोई मैं दिखाई तो नहीं पड़ता है। चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष, शरीर में जो चेतना दिखाई पड़ रही है यही तो पुरुष है, दूसरा शरीर को छोड़ करके अलग कोई पुरुष थोड़ी है इसमें। जब आप विवेक करेंगे तब पता लगेगा। रात्रि में जब मैं शरीर को खाट पे लिटा देता हूं और फिर एक स्वप्न शरीर का निर्माण करके इस शरीर में जो तादात्म्य है उसको त्याग करके उस शरीर में तादात्म्य किया जाता है, स्वप्निक शरीर में। अब उसके बाद विचार जब करेंगे पता लगेगा इसमें कोई तादात्म्य नहीं था, उस समय स्वप्निक शरीर में तादात्म्यक था। और उसी में यदि सुख भी होगा तो आपको सुख महसूस हो रहा था, दुख भी होगा तो दुख का अनुभव कर रहे थे आप स्वप्न शरीर में। फिर जब जागृत में आ गए तो उस शरीर के तादात्म्य छूट गया। अब कहते हैं जब आप निर्विकल्प समाधि में चले जाएंगे तो जागृत शरीर में जो तादात्म्य है ये भी छूट जाता है। जो अभ्यास करते हैं इसके भी जो तादात्म्य है वो छूट जाता है। सुषुप्ति अवस्था में कौन से तादात्म्य रहता है? जैसे आप कोई किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, गहरी सुषुप्ति में जब चले जाते हैं वो पीड़ा का बोध नहीं होगा, जो तादात्म्य था वो नहीं रहता है सुषुप्ति में भी, और निर्विकल्प समाधि में उसका तादात्म्य नहीं रहता है। तो जब आप विचार करेंगे विवेक करेंगे तब तो पता लगता है शरीर से विलक्षण एक अलग तत्व है, तब तो संभावना वहां दिखाई पड़ेगी मनन के द्वारा। जब आप मनन करेंगे कि संभावना जो जीव है वही ब्रह्म है, जीवो ब्रह्म ही बना पर, शंकराचार्य भगवान कहते हैं जीव अपर नहीं है ब्रह्म से, अलग नहीं है, वही है। तो इसी प्रकार मनन के द्वारा उसका असंभावना को दूर किया जाता है। इस प्रकार आपका यहां तक विचार जो है चला था। उसके आगे जैसे आप लोगों को कहीं डाउट होगा ना आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ नहीं कोई डाउट भी होगा ना पूछ सकते हैं। तो दो श्लोक तक हो गया था। इदानीं विपरीत भावनां तन्निवृत्ति उपायं च दर्शयति। अब जो है जो विपरीत भावना शरीर में जो अहम बुद्धि है इसमें कहते हैं विपरीत भावना। उस विपरीत भावना को तत् निवृत्ति उपायम च दर्शयति, कैसे उसकी निवृत्ति होगी उसका उपाय यहां बतला रहे हैं आगे के श्लोक में। पहले दिखाएंगे वहां विपरीत भावना क्या है, फिर उसका उपाय भी बताएंगे। बहुजन्म दृढ़ाभ्यासाद देहादि स्वात्मधिक्षणात् पुनः पुनरुदित्येवम् जगत् सत्यत्वधीरपि। बहुजन्म दृढ़ाभ्यासात् देहादिषु आत्मधीः क्षणात् पुनः पुनः उदेति, अनेक जन्मों के दृढ़ अभ्यास से, जैसे कोई मच्छर के शरीर में चला गया, कीड़े मकोड़े के शरीर में चला गया, सर्पों के शरीर में चला गया, पशु पक्षी बन गया, कई बार आदमी भी बने, कई बार देवता बने, इंद्र बने, चंद्र बने, पता नहीं क्या क्या बने होंगे, 84 लाख योनियों में जीव जो है भ्रमण करता रहता है। तो उन जन्मों में शरीर के साथ जो दृढ़ अभ्यास हो गया, यही मैं हूं, तादात्म्य हो गया। वो जो तादात्म्य जो है सुनने के बाद भी पुनः जो है फिर तादात्म्य हो जाते हैं। अभी शास्त्र सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि मैं ब्रह्म हूं, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इनसे परे हूं। अब घर में जब गए और बहू यदि बोलेगी इनकी तो बुद्धि ही नहीं है, हैं? मेरी बुद्धि नहीं है, और तुरंत वो ब्रह्माभ्यास खत्म हो गया। अब उस समय यदि व्यक्ति थोड़ा शांति से विचार करे कि अभी तो वहां सत्संग भवन से सुन करके आ रहा था कि मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म हूं, तो इसलिए महात्मा लोग कहते ना, जैसे किसी तोता को कृष्ण कृष्ण राम राम कुछ सिखा देते हैं, जो भी घर में आएगा तो कृष्ण कृष्ण राम राम कहता है, लेकिन बिल्ली यदि सामने आ गई टें टें करना शुरू कर देगा और राम कृष्ण सब भूल जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों के जो अभ्यास है वो क्या है, तोते जैसा है, दृढ़ नहीं है। दृढ़ होगा तो हर अवस्था में वो बना रहेगा। बहु जन्म दृढ़ाभ्यासा देहादिषु आत्मधि, देह आदि में आत्मधि। अब यहां आदि शब्द जो दिए है ना, तो स्थूल शरीर में भी, सूक्ष्म शरीर में भी, कारण शरीर में भी, सब में आत्मबुद्धि। अब स्थूलो हम, स्थूल शरीर में अहम बुद्धि, अक्षण कारण एक आंख दिखाई नहीं पड़ती है तो आंख के साथ तादात्म्य हो जाता है। चंचलो अहम मन के साथ तादात्म्य हो जाता है। अहम निश्चिनोमि बुद्धि के साथ तादात्म्य हो जाता है। अज्ञो अहम अज्ञान के साथ भी तादात्म्य होता है, मैं तो अज्ञानी हूं। तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर के साथ तादात्म्य होता है। वो कैसा, हर पल क्षणत पल पल होता रहता है। पुनः पुनः उदित्येवम बार बार जो है ये तादात्म्य उसमें बनता रहता है। अब दूसरी बात इसमें बतलाते हैं, शरीर आदि में तो तादात्म्य होता है, जगत सत्य है ऐसा महसूस होता है। जगत सत्यत्व धीरपि, संसार सत्य है। अभी आप सोच लीजिए 1000 के जो नोट है, आपको कोई एक ट्रक में भर्ती करके आपके घर में लेकर के आ गया, तो अभी आप रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अभी उसके प्रति जो है अनित्य बुद्धि हो गई कि किसी काम के नहीं है ये। लेकिन 2000 के नोट यदि लेकर के आए तो वाह, छप्पर फाड़ करके भगवान देते हैं जिसके देते हैं, व्यक्ति क्या कहेगा। लेकिन उस नोट के प्रति, क्योंकि सरकार उसको बैन कर दी और शास्त्र संपूर्ण दृश्य जगत को बैन कर देता है, शास्त्र जो है जितने भी दृश्य जगत है ये सब अनित्य है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। चाणक्य जी कहते हैं अनित्यानि शरीराणि, जो शरीर आदि है ये अनित्य है। विभवो नहीं वह शाश्वतः, जो आपके मकान दुकान जमीन जायदाद कार है पत्नी पुत्र आदि जो भी आपका वैभव है ये भी शाश्वत नहीं है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु जो है आपके पीछे, जब आप जन्म हुए उस क्षण से आपके पीछे जो है पड़ी हुई है, किसी भी समय दबोच सकती है। इसलिए कहते हैं कर्तव्यो धर्म संग्रह, मनुष्य के साथ सदा जो रहने वाली चीज है धर्म है उसका संग्रह करना चाहिए। तो यहां कहने का अभिप्राय जगत जो है सत्य लगता है, ये भी विपरीत भावना है। शरीर आदि में अहम बुद्धि करना ये भी विपरीत भावना है, और जो दृश्यमान जगत है ये भी विपरीत भावना है। इन दोनों को हटा कैसे, किससे हटेगा, कैसे हटेगा उसके बारे में यहां बताते हैं। उसके टीका में कुछ नहीं लिखे, बहु जन्म इति केवल देश, क्योंकि स्पष्ट है उसका अर्थ है इसलिए टीकाकार उसको नहीं लिखे। विपरीता भावनीय मैकाग्र्यात्सा निवर्तते तत्त्वोपदेशात् प्रागेव भवत्येतदुपासना इयं विपरीता भावना एकाग्रात् सा निवर्तते। जो विपरीत भावना है शरीर आदि में अहम बुद्धि, वो संसार में सत्यत्व बुद्धि, एकाग्रता से इसकी निवृत्ति होगी। किससे? एकाग्रता से। अब आप थोड़ा थोड़ी सी भी आंख बंद करके जब बैठते हैं तो बीच बीच में संसार के हिसाब किताब, बाल बच्चों के, परिवार के, सगे संबंधियों के, दूसरे दूसरे विचार भी बीच बीच में आ जाते हैं, तो उसको एकाग्रता नहीं कहेंगे। लंबे समय तक एक ही भावना से जो ओतप्रोत रहता है, और हम लोगों की भावना बीच बीच में टूट जाती है, तो इसलिए यहां कहते हैं एकाग्रता उसके लिए चाहिए। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कर्मणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यार्थम उपासना मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा। कहते हैं जो कर्म हम लोग करते हैं वो चित्त शुद्धि के लिए, और एकाग्रता के लिए उपासना की जाती है, इष्ट देवता का चिंतन, इष्ट देवता के स्वरूप का ध्यान, उससे एकाग्रता आती है। मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान चाहिए मोक्ष के लिए, द्वितीय ज्ञानान्न मुक्ति। तो इस प्रकार ज्ञान से ही व्यक्ति मुक्त होगा, ये वेदांत के अनुशासन है ऐसे उसमें बतलाया गया है। तो इसलिए यहां भी एकाग्रता से जो विपरीत भावना आ गई है उसकी निवृत्ति होगी। लेकिन उपासना कब करनी चाहिए? तत्व उपदेशाद प्राग एव उपासनाद भवती, एतद उपासना भवती। तत्व उपदेश अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, इस उपदेश से पूर्व, इसके पहले, ज्ञान से पहले उपासना बताई जाती है। इसलिए उपनिषद में भी बात आती है, दृश्यते त्वग्रिया बुद्धिया सूक्ष्माया सूक्ष्मदर्शी भी, अग्र बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि, एकाग्र शब्द एकम अग्रम यस्य तदेकाग्रम, एक ही चीज में आपकी दृष्टि जो है स्थिर है, किसी भी चीज में ऐसे दृष्टि को आप स्थिर करके रखे हैं कि दूसरे विचार का प्रवेश उसमें निषेध है, कोई विचार उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए तत्वोपदेश से पहले उपासना की जाती है। अभी आगे यहां बतलाएंगे, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी थे, मां काली के उपासक थे, वो हर समय मां 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 ऐसे वाणी से भी बोलते रहते थे, उनके ध्यान भी उसी में उसमें ध्यान लगाते रहते थे। तो आगे चल करके ऐसे गहनता हो गई कि साक्षात मां जो है सामने खड़ी होती थी और उनसे बात करते थे, जैसे मां और बेटे का वार्तालाप होता था, ऐसे जो जगत जननी है मां काली, उनके साथ बात करते थे। इष्ट देवता का साक्षात्कार होना उपासना का फल है। अब इतने तल्लीनता के साथ, गहनता के साथ उसमें डूब गए कि सामने केवल वही दिखाई पड़ती है, चाहे जिसका जैसे जो इष्ट है, कि कोई किसी के कृष्ण इष्ट हो सकते हैं, किसी के राम हो सकते हैं, किसी के शिव हो सकते हैं, किसी के लिए गणपति हो सकते हैं, किसके लिए मां दुर्गा हो सकती है, कोई भी। तो जो भी इष्ट है उसका साक्षात्कार करना। तो कब होगा? जब एकाग्रता होगी। बिना एकाग्रता से और शरीर के साथ जब तक तादात्म्य भाव होगा, इष्ट देवता के साक्षात्कार नहीं होता है। कभी कभी जैसे आप सोचिए, नोट गिन रहे हैं, सोच लीजिए, नोट गिनते समय आप गिन रहे थे, मैंने थोड़ा ज्यादा गिन रहे थे, 8-10 लाख रुपए आप गिनती कर रहे हैं। अब इतने में आपके पोता अथवा पोती आकर के बीच में चिल्ला दिया, तो आपकी गिनती खत्म हो जाएगी। हाँ, इसको हटाओ पहले, कितने गिनती किए थे भूल जाएंगे आप। आप जप करके माला लेकर के बैठ गए, ठीक है, इतने में थोड़ा सा आपका मन जो है अंतर्मुख होने लगा, अब उतने में आपके पोता आके गोद में आके बैठ गया। कभी कभी होता है घरों में, अथवा उसी समय ही आपके मोबाइल की घंटी बज गई। आजकल तो सबसे बड़ा विक्षेप यही है, मोबाइल की घंटी, नहीं तो घर में कोई बेल जो है बज गई। तो जो जब ध्यान चल रहा था तुरंत जो है बहिर्मुख हो जाएंगे आप, उससे हट जाएंगे। तो इसलिए यहां कहते हैं, तत्व ज्ञान के उपदेश गुरु जब देंगे उसके पहले जो है उपासनाएं बतलाई जाती हैं। मन को पहले आप एकाग्र करेंगे, उस एकाग्रता के माध्यम से जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, सबसे सूक्ष्म है, उसको आप जब अनुभव करने के लिए जाएंगे तो सूक्ष्म है। जैसे आप सोचिए, सुई है, सुई में यदि आप धागा को लगाना चाहते हैं तो उस धागा को भी पहले सूक्ष्म करना पड़ेगा, उसमें जितने छोटा छेद होगा उससे भी और सूक्ष्म करना पड़ेगा उस धागा को, और थोड़े से भी उसके रेशे इधर उधर यदि हुए होंगे तो कभी भी सुई में धागा प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ठीक इसी प्रकार संसार के जो अभिलाषाएं हैं, विषय है, उनको सेवन करने की जो बुद्धि है, उसे आस्ते आस्ते मन को हटाना पड़ेगा। तो हटाते हटाते जो है मन सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म होगा तो सूक्ष्म मन से जो इष्ट देवता है, जिसका भी जो इष्ट है, उनका चिंतन किया जाता है, उसको कहते हैं उपासना। उपसमीपे आसनम उपासनम, जो आपके इष्ट है उनके समीप में बैठने का अभिप्राय है उनका चिंतन चलना। उनके समीप में बैठने का मतलब उनका चिंतन चलना। जैसे कहते हैं ना सामान्य लोग व्यवहार में भी, जिसके प्रति भाव है वो बहुत दूर में होने पर भी आपके पास है, क्योंकि आपके भाव है। और पास में होने पर भी यदि भाव नहीं है तो दूर में है। तो इसलिए यहां उसकी टीका देख लीजिए, विपरीता इति विपरीत भावना निवर्तकम यद एकाग्रम तद कुतो जायते। विपरीता जो भावना है उसको निवृत्ति करने वाला क्या चीज है? ऐसे कहते हैं एकाग्रम। कब वो होता है? कहते हैं तत्वोपदेशाद प्राग, ऐसी शंका होने पर, इति आशंका तत्वोपदेशाद प्राग, अहम ब्रह्मास्मि आदि जो तत्वोपदेश है उसके पूर्व जो है उपासना करनी पड़ेगी। एतद एकाग्रम ब्रह्म उपदेशाद प्राग एव सगुण ब्रह्म उपासनाद भवति भवेत इत्यर्थः। सगुण उपासना, देखो गुणेन सह इति सगुणः, जहां गुण है, चाहे सगुण निराकार सगुण साकार, उपासना करने के लिए कुछ ना कुछ आलंबन चाहिए। बिना आलंबन से मन स्थिर नहीं होता है। तो इसलिए चाहे आप सगुण साकार रूप को ले सकते हैं, राम कृष्ण शिव आदि, उनका गुण भी है और आकार भी है। और जो थोड़ा और सूक्ष्म चिंतन करना चाहते हैं, सगुण निराकार सृष्टिकर्ता, सबके नियामक, न्यायकर्ता, उसका कोई आकार नहीं है लेकिन सबके लिए न्याय करता है, सारी सृष्टि की उत्पत्ति वही करते हैं, केवल गुण का चिंतन करना। तो इस प्रकार सगुण जो ब्रह्म है, इनकी उपासना से मन जो है उस प्रकार भावना से उत्प्रोत हो जाएगा। केवल राम राम के चिंतन, देखिए तुलसीदास जी महाराज जी सीताराम को अपने इष्ट मानते थे। तो एक बार मैं एक महापुरुष से सुना था, वो कह रहे थे कि तुलसीदास जी महाराज जा रहे थे शाम के समय, तो जंगल के रास्ते से उनको गुजरना था। उस गांव के कोई भद्य व्यक्ति उस रास्ते से आ रहे थे तो उसमें कुछ गलत कार्य करने के लिए कुछ पुरुष स्त्री इकट्ठे हुए थे। तो भद्र व्यक्ति सोचे कि भाई ये संत महात्मा आदमी है, उधर क्यों जाएंगे? तो उनको निश्चित, देखो वहां जो पुरुष स्त्री दिखाई पड़ रहे हैं ना, वो ठीक नहीं, आप उधर मत जाइए। अब जैसे सुने ये शब्द और दिखाई पड़ा, तुरंत तुलसीदास जी महाराज साष्टांग प्रणिपात किए, कहे कि मेरे प्रभु राम और सीता जो है उसमें लीला कर रहे हैं। आम व्यक्ति में भी उनको सीताराम दिखाई पड़ते थे। उपासना करते करते बुद्धि ऐसी बन जाती है कि सर्वत्र सिया राम मैं सब जगह जानी करूं प्रणाम जोरी, वो तो प्रत्यक्ष ऐसे देखते थे। तो इसी प्रकार उपासना करते करते ऐसा लगे कि राम मेरे साथ है, कि कृष्ण मेरे साथ है, मैं उठते बैठते खाते पीते हंसते खेलते घूमते हर समय हर पल मेरे साथ है। ऐसी बुद्धि जिसकी बन गई तो उपासना से एकाग्रता उसके अंदर आ जाएगी। और ऐसे पुरुष को यदि कोई उपदेश देगा, जैसे रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी जी महाराज दीक्षा दी तो तुरंत उनको ज्ञान हो गया, क्योंकि इष्ट देवता के साक्षात्कार उनको हो गया था। उसे कहते हैं कृतोपास्ति, कृता उपास्ति ये न, जिसने उपासना करके अपने इष्ट देवता का साक्षात्कार कर लिया, ऐसे व्यक्ति को तुरंत ज्ञान हो जाएगा। अथवा जो निर्विकल्प समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगा करके जो उस स्थिति में रहता है, समाधि स्थिति में, और बहिर्मुख अवस्था में उसको भी शब्द तत्वमसि तुरंत ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए उपासना की आवश्यकता है। अब जैसे कल यहां 56 प्रकार के भोग भगवान, ये उपासना है भगवान की, परमात्मा की उपासना है। तो उपासना को जितने भी उपनिषद है, ज्ञान कांड है, उसके पहले शंकराचार्य भगवान उसके विचार किए, चाहे वो ईशावास्य कठक केन प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैतरे ऐतरे या छांदोग्य बृहदारण्य, सबसे ज्यादा छांदोग्य उपनिषद में आया है। उपासना की उसमें उपासना का विचार उसमें आया है। तो इसलिए यहां इस चीज को बतलाए हैं। आगे उपासना कहां बतलाया गया है उसके ऊपर प्रश्न है, ननु एतद कुतो अवगतम इति आशंक्य, कहां इसका बोध होगा, ऐसी आशंका होने पर उपासना विचारस्य वेदांत शास्त्री कृतत्वाद इति आह, उपासना के विचार जो है वेदांत शास्त्र में, वेद के जो निष्कर्ष है उपनिषद, उसी में ज्ञान बतलाने से पहले उपासना की बात आई है, उसका चिंतन किया गया है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। अच्छा कल बंद रहेगा तो परसों। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव।